नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नागरिकता निर्धारण या किसी व्यक्ति को विदेशी घोषित करने की प्रक्रिया निष्पक्ष होनी चाहिए और उचित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। न्यायालय ने असम के विदेशी न्यायाधिकरणों द्वारा विदेशी घोषित किए गए 27 लोगों की याचिकाओं की सुनवाई करते हुए ये बात कही। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने 27 मामलों में गुवाहाटी उच्च न्यायालय और विदेशी न्यायाधिकरणों के आदेशों को रद्द कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि नागरिकता तय करने या किसी व्यक्ति को विदेशी घोषित करने की प्रक्रिया न्यायिक सिद्धांतों से समझौता नहीं किया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने अयोध्या राम मंदिर में दान के कथित गबन मामले में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल एसआईटी से जांच संबंधी स्थिति रिपोर्ट सौंपने को कहा है। न्यायालय ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग से जुड़ी याचिकाओं पर केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी किया है। इससे पहले 13 जून को उत्तर प्रदेश सरकार ने राम मंदिर में दान में कथित अनियमितताओं के मद्देनजर 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तमिलनाडु में अमोनिया गैस रिसाव घटना में प्रभावित झारखंड के श्रमिकों के मुद्दे का संज्ञान लिया है। राष्ट्रपति ने झारखंड में रामगढ़ जिले के सरकारी अधिवक्ता संजीव कुमार अम्भष्ट की ओर से दायर याचिका के मद्देनजर किया है। राष्ट्रपति सचिवालय ने श्रम और रोजगार सचिवों को तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने और संबंधित रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। याचिका में झारखंड के प्रभावित श्रमिकों की सुरक्षित वापसी के साथ साथ वित्तीय सहायता, मुआवजे और पुनर्वास की मांग की गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
भारत के दूसरे सबसे लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर वाला 63 किलोमीटर लंबा 6 लेन का लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे स्वचालित और अत्याधुनिक मशीन निर्देशित निर्माण तकनीक से बना देश का पहला एक्सप्रेसवे भी है। एआई के जरिए गति नियंत्रण की प्रणाली, हर 2 किलोमीटर पर आपातकालीन कॉल बॉक्स और 2 एकीकृत 24/7 कंट्रोल रूम वाला ये एक्सप्रेसवे 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति के लिए डिजाइन किया गया है और इससे लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा का समय घटकर मात्र 35 से 40 मिनट होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने रांची जिले के खलारी जिले के पिपरवार क्षेत्र के करकट्टा वन में अवैध कोयला खनन के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। इसमें लगभग 200 टन अवैध रूप से खनन किया गया कोयला जब्त किया गया है। अधिकारियों ने इस अभियान को क्षेत्र में संगठित कोयला खनन और तस्करी पर एक बड़ी कार्रवाई बताया और कहा कि इसमें शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को आज उपराष्ट्रपति भवन में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी और सैनिक स्कूलों के बारे में जानकारी दी। एनसीसी के राष्ट्र निर्माण में योगदान की सराहना करते हुए उपराष्ट्रपति ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत कैडेट विनियमित कार्यक्रम को राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने की एक उत्कृष्ट पहल बताया। उन्होंने नशा मुक्त भारत अभियान और स्वच्छ भारत अभियान सहित एनसीसी की सामुदायिक सेवा पहलों की भी प्रशंसा की। वियतनाम के फू क्वोक द्वीप के पास नाव पलटने की घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज विशेष विमान से भारत लाए जाएंगे। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि हवाई जहाज मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रात करीब 9:30 बजे उतरेगा। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर आईआरजीसी ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की जिम्मेदारी ली है। ईरान ने इसे हाल में उसके सैन्य ठिकानों पर अमेरिका द्वारा किए गए हमलों का जवाब बताया है। लंदन के लॉर्ड्स में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड को एकमात्र टेस्ट में 457 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में चौथे दिन इंग्लैंड ने ताजा समाचार मिलने तक 7 विकेट पर 146 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारत ने अपनी दूसरी पारी 7 विकेट पर 341 रन बनाकर घोषित कर दी। इंग्लैंड की टीम पहली पारी में 170 रन पर सिमट गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।